İyi işte. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yamunatiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yamunatiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Sri Hari Nam Sankirtan ki, Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण. तो आज हम पढ़ रहे स्कंद पांचवा अध्याय चौथा, भगवान ऋषभ देव के लक्षण. तो आज है श्लोक क्रमांक 9. एषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आसीद एनेदं वर्षम् भारतम् इति व्यपदिशन्ति एषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुण आसीत् एनेदं वर्षम् भारतम् इति उपदिशन्ति एषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुण आसीत् एने इदं वर्षम् भारतम् इति व्यपदिशन्ति येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुण आसीत् एने इदं वर्षम् भारतम् इति व्यपदिशन्ति येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुण आसीदेन इदं वर्षम् भारतम् इति व्यपदिशन्ति येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुण आसीत् एन इदं वर्षम् भारतम् इति व्यपदिशन्ति हरे कृष्ण. तो शब्दार्थ कृपया दोहराइए. येषां जिनमें से खलु निश्चय ही महायोगी ईश्वर का महान भक्त भरतः भरत ज्येष्ठः सबसे बड़े श्रेष्ठ गुणः उत्तम गुणों से संपन्न आसीत् था एन जिसके द्वारा इदम् यह वर्षम लोकदेश भारतम भारत इति इस प्रकार व्यपदिशन्ति लोग कहते हैं. तो भाषांतर और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न महान भक्त था. उसी के सम्मान में इस लोक को भारतवर्ष कहते हैं. तात्पर्य भारतवर्ष नामक यह लोक पुण्य भूमि भी कहलाता है. आज के समय में भारत भूमि या भारतवर्ष हिमालय पर्वत से लेकर कुमारी अंतरिप तक फैला हुआ एक लघु भूखंड है. कभी कभी इस प्रायद्वीप को पुण्य भूमि कहा जाता है. श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भूमि के वासियों को विशेष महत्ता प्रदान की है. चैतन्य चरितामृत आदि 9.41. भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार. जिसने भी भारत वर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लिया है उसे परोपकार द्वारा अपना जीवन सार्थक बना लेना चाहिए. इस भूभाग के वासी अत्यंत भाग्यशाली है. वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करके अपने जन्म को पवित्र बना सकते हैं और भारत भूमि के बाहर जाकर सारे विश्व के कल्याण हेतु इसका उपदेश दे सकते हैं. ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदे अहम श्री गुरुहो श्रीयुता पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितम शम नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। तो आज हम पढ़ रहे स्कंद पाँच अध्याय चौथा भगवान ऋषभदेव के लक्षण। ते श्लोक क्रमांक 9। येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आसीत एनेदं वर्षं भारतम इति व्यपदिशन्ति। तो सबसे शुरुआत में मतलब हम देखते हैं कि जैसे अभी की स्थिति ऐसी है कि एक कोरोना की वजह से कैसे समस्या हो गई है, तो बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। अभी इतने सारे लोग बीमार हो जाते हैं कि मतलब डॉक्टर भी कम पड़ जाते हैं, है ना। तो डॉक्टर की जगह फिर कंपाउंडर को भी कुछ कुछ काम करना पड़ता है, मतलब वो भी मेडिसिन देते हैं, उनको पता रहता है मेडिसिन देना है, उनको ये सब काम करना है, ये सब कुछ, क्योंकि डॉक्टर यही करते हैं, सिंपल रहते हैं। बोले डॉक्टर ने ये सब किया था तो ये ट्रीटमेंट हम भी दे सकते हैं। तो उसी तरह से वो कंपाउंडर का जैसा स्थिति है मेरा, वैसे सारे डॉक्टर्स नीचे बैठे बड़े सब सर्जन से जो मतलब पता है ये भगवतम है, हाँ ये हरे कृष्ण महामंत्र है ना, लेकिन चेतना में बहुत ही परिस्थिति में बहुत ही मतलब एक भिन्नता है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जैसे कि एक बार ऐसे हो गया कि जो एक व्यक्ति का गाड़ी बहुत खराब हो गया, बहुत दुरुस्त करने का प्रयास कर रहा था लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा था। तो फिर बहुत अलग अलग लोगों के पास चला गया लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर उसका बहुत महंगा गाड़ी था, फिर एक बहुत ही एक पुराना ऐसा गैरेज था वहाँ पे चला गया। जाने के बाद उसने बोला कि इसको दुरुस्त करना है, तो वहाँ पे जो व्यक्ति थे थोड़ा सा बूढ़े थे, तो आए, उन्होंने गाड़ी देखा, खोला, कुछ इधर उधर देखा, चालू करने का प्रयास किया, फिर उन्होंने एक लकड़ी का हथौड़ा लिया और एक जगह पे बस करके हथौड़ा मारा, बोले अभी गाड़ी चालू कीजिए। वो तो उन्होंने गाड़ी चालू कर दिया, गाड़ी चालू हो गया। तो बोले कि कितना हुआ बिल, बोले 10,000 रुपये। बोले क्या किया आपने, बस एक हथौड़ा लकड़ी का, वो भी एक जगह पे कर दिया 10,000 उसके। वो बोले हथौड़ा मारने के 1 रुपये है, लेकिन कहाँ पे मारना है, कैसे मारना है, उसके लिए 9,999 है। तो उसी तरह से तो बोलते कि एक्सपीरियंस चाहिए, रियलाइजेशन चाहिए उस तरह से। तो ये जो चर्चा हो रही है श्रीमद् भागवतम है ना, ये सात्वत संहिता है, ये परमहंसों के द्वारा चर्चा होती है, सुनी जाती है उनके लिए। और उसी तरह से ये सब जो गुरु या फिर जो प्रभुपाद जी है गुरु है, जो वैष्णव है श्रेष्ठ और ज्येष्ठ वैष्णव है, तो डॉक्टर के जैसे, वो परिस्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार, लोगों के अनुसार उनको पता रहता है कैसे बदल करना है, तो उनका वो अनुभव रहता है। तो मेरा उतना एक्चुअली वो अनुभव नहीं है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं कृपया सभी से आशीर्वाद की याचना करता हूँ, विशेष करके राधेश्याम प्रभु है, जुगल किशोर प्रभु है, सरलक्ष्मण प्रभु है, रेवतीपति प्रभु, दाऊजी नीता है प्रभु, और बाकी के भी जो मतलब जो सारे भक्त है। तो एक्चुअली आज के हम श्लोक में देख रहे बहुत ही प्रभुपाद जी उसमें बहुत सुंदरता से बताते हैं। इसका एक्चुअली अर्थ ऐसा है कि ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, जो ज्येष्ठ गुणों से संपन्न महान भक्त था, उसी के सम्मान में इस श्लोक को भारतवर्ष कहते हैं। तो भारत है ना, तो थोड़ा परिस्थिति देखना चाहिए एक्चुअली भारत मतलब क्या है। मुझे अभी भी याद है जैसे एक समय पे हम क्लास सुनते थे बहुत शुरुआत में, प्रेरणा लेक्चर में गौरांग प्रभु ने दिया था मेरा भारत महान करके तो वो सुनने के बाद इतना मतलब बहुत हंसी आ जाता है, अरे हाँ भारत में क्या क्या है। लेकिन फिर बताते हैं कि किस तरह से इस भारत देश में मतलब जो ये है आध्यात्मिकता है वो किस तरह से वास करती है। मतलब ये जो अपने थोड़ा सा भी खरोचेंगे, मतलब इट्स लाइक अगर बोलते कि जिस तरह से आप थोड़ा सा जमीन हटा लेंगे तो क्या देखिएगा आपको, इस भारत देश में आध्यात्मिकता ही मिलेगी। तो यही प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये पुण्य भूमि है और इसी पुण्य भूमि का नाम भारतवर्ष क्यों हुआ, प्रभुपाद जी बताते क्योंकि ये जो भरत महाराज है उनके नाम से। अब ये भरत महाराज कौन है, जो राजा ऋषभदेव है उनके 100 पुत्र में से ज्येष्ठ पुत्र है। तो ऐसे तो प्रभुपाद जी बताते 3 भरत महाराज है ना, एक तो राम जी के जो भाई वो भरत महाराज है, और दुष्यंत और शकुंतला उनके पुत्र भरत महाराज, और ये जो है ऋषभदेव के जो उनके पुत्र है ये भरत महाराज। तो ऋषभदेव के पुत्र के भरत नाम से ये भारतवर्ष नाम मिला है। वैसे इसका नाम पहले इलावृत वर्ष था, रूपा जी बताते हैं। और वैसे तो जो दुष्यंत के पुत्र थे भरत, वो भी बहुत शक्तिशाली थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत शक्तिशाली। मतलब बचपन में वो प्राणियों को ऐसे आराम से पकड़ के, जैसे प्रभुपाद बोलते कि जैसे कुत्ते बिल्ली के साथ खेलते उस तरह से, लाइक कैट्स एंड डॉग्स ऐसे प्रभुपाद बोलते खेलते थे, वैसे वो शेर के साथ, हाथी के साथ पकड़ के खेलते थे, शेर के ऐसे मुंह खोल के उसे दांत गिनते थे मतलब ये बहुत ऐसे शक्तिशाली ऐसे। लेकिन प्रभुपाद बोलते ये जो भरत है भारतवर्ष, ये जो राजा ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्रों के नाम से मिला है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक्चुअली हम भारत देश में रहते हैं, लेकिन भारत देश में बोलते हैं कि क्रांति करना चाहिए, रिवोल्यूशन करना चाहिए। मतलब ये एक पहला चीज हम लेने वाले हैं अभी, ये मेरे टर्म्स मैंने दिया है रिवोल्यूशन, कि जिसमें रिवोल्यूशन इन थॉट्स, मतलब रिवोल्यूशन करना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से हमारे विचार रहेंगे उस तरह से हम बनेंगे, समस्या है कि लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये हमें थॉट्स कौन सा किस तरह से विचार करना है कभी बताया नहीं जाता है। जैसे अभी मुझे याद है, मतलब इस्कॉन में आने से पहले जब मैं कॉलेज स्टडीज में नहीं आया था, तो कॉलेज में नॉर्मल कॉलेजेस में जैसे होता है तो मतलब एडमिशन लेते हैं लोग है ना बहुत बार, अरे मुझे सिविल मिल गया, कंप्यूटर लेना चाहिए था, मुझे ये लेना था वो नहीं मिला, इस तरह से पहले से कंपैरिजन कंपटीशन करना चालू करते हैं। फिर कोई बोल सकता है कि आप ऐसा करो, ऑप्शन हो सकता है कि आप एक सब्जेक्ट ले लो, मतलब एक डिपार्टमेंट ले लो, बाद में अच्छे मार्क्स लेकर आप नेक्स्ट ईयर भी चेंज कर सकते हो अगर बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ रहता। तो बोलते ठीक है देख लेंगे, चलो जो नसीब में है कर लेंगे। तो इस तरह से मतलब भारत देश में, मतलब यहाँ पे नॉर्मली होता है कि चलो रूटीन लाइफ से जो चल रहा है करेंगे, रिवॉल्यूशन ज़्यादा मत अभी मत सोचो इसके बारे में, या फिर अभी तो नसीब में है ही नहीं ना चल जाएगा। एक नॉर्मल मैंने जब देखा था कॉलेज स्टडीज़ में, या फिर नॉर्मली जो कॉलेज में होता है, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ थोड़ा दृष्टता कर रहा हूँ इसके बोलने का, कि कभी कभी बोलते अरे वो जो है वो स्त्री बहुत सुंदर है, वो लड़की बहुत सुंदर है बोलेंगे, तो कोई बोलेगा ठीक है आप प्रयास कीजिए, नहीं नहीं नसीब में होगा तो देख लेंगे, नहीं तो अपने आप किसे, और फिर जिंदगी बाद में बोल सकते अरे था ही नहीं नसीब में ऐसा है। तो रिवोल्यूशन मतलब कभी ये कभी सिखाया नहीं जाता कि प्रयास करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। नॉर्मली बस इतना ही व्यक्ति बोलता है दैववादी के नाम के ऊपर, नॉर्मली अभी क्या हमने सुना हुआ है कि भगवान है, ऐसा हो सकता है, पॉजिटिव रहना है, लेकिन उसके ऊपर काम किया नहीं जाता, रिवोल्यूशन नहीं होते। तो या फिर रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारतवर्ष में प्रभुपाद बोलते हैं कि भारत भूमि ते जन्म हुई ले यार, अरे आपका भारत भूमि में जन्म हुआ आप क्या कर सकते हो, आप रिवोल्यूशन ला सकते हैं। मतलब ये चैतन्य महाप्रभु ने जो रिपीट किया है, क्यों ऐसा बोला है, क्योंकि हमें अपने स्ट्रेंथ के ऊपर विश्वास ही नहीं, शक्तियों के ऊपर कि हम कर सकते हैं करके, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो कंपनियां हैं उसके मालिक जो है फॉरेन में वगैरह, उन्होंने रिस्क लिया था शुरुआत में स्टार्ट करना है, रिवोल्यूशन लाया, उन्होंने सोच लिया कि कैसा करना है और उसके ऊपर उन्होंने काम किया, तो आज वो बड़े कंपनी के मालिक है, लेकिन भारत में बस लेबर क्लास बना दिया हम लोगों। तो ऐसा क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने लाया था इसको, एक्चुअली हम देख सकते हैं अंग्रेजों ने जब आए तो उन्होंने क्या किया, गुरुकुल सिस्टम को समाप्त कर दिया और जो विचार करने की शक्ति है उसको सीमित कर दिया, और कामगार शैली मतलब आप काम करना सीखो, बस जॉब करना है और कुछ नहीं, आपको जॉब करना है, सिविल जॉब्स करते रहिए वो सबसे। तो एक समय ऐसा था कि जो एक किसान हो सकता है, एक ब्राह्मण हो सकता है, या फिर कोई एक जो सरल कोई व्यापारी हो सकता है, लेकिन लोगों का सोच कहाँ पे उन्होंने डाल दिया, सोचो मत बस इस तरह से सोचना है, सबको इंजीनियर्स बनना है, सबको ये करना है उस तरह से, एक ये जो सोचने का शक्ति, तो इससे क्या होता है व्यक्ति रिवोल्यूशन करना, रिवोल्यूशन का अर्थ क्या है कि जिसमें सोच जो क्या कर सकते हैं, बदल ला सकते हैं। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि इस्कॉन में भी मतलब हाँ प्रभुपाद जी के बुक से प्रचार कर सकते हैं, हो जाता है बराबर है, लेकिन फिर भी समय के अनुसार सोच लाना जरूरी रहता है। जैसे मतलब राधेश्याम प्रभु जी ने वो सारे पुस्तक प्रभुपाद जी के पुस्तक है उसको बस क्या किया, कैटेगराइज कर दिया सिस्टमेटिकली। तो ये एक रिवोल्यूशन, देखिए उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है, उसके लिए समय लेना पड़ता है, उसके लिए रिवोल्यूशन लाना, वो सोचना पड़ता है, तभी आगे जाके उसका क्या मिलता है, क्योंकि समय के अनुसार चलना जरूरी रहता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि मतलब व्यक्ति डेविएशन हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। एक जो इस तरह से, या फिर श्रील प्रभुपाद जी सबसे बड़े उदाहरण है, सारी चीज़ों में रिवोल्यूशन लाया उन्होंने सोचने में, ऐसा नहीं कि भक्ति लाया करना है। मतलब अभी अगर किसी अब गौड़िया मठ में जाएंगे, मतलब मुझे अभी याद है जब मैं शुरुआत में मायापुर में जाता था, गौड़िया मठ वहाँ पे बहुत है ना, तो एकदम से पुराने बिल्डिंग्स दिखते थे, बहुत बार जब मैं देखता था घाट से जाता था तो ऐसे लगते थे सब बिल्डिंग्स पुराने हो गए, बस अपना मंदिर एकदम सुंदर एकदम फ्रेश दिखता था। तो प्रभुपाद बोलते थे कि अपना मंदिर इतना सुंदर होना चाहिए, इतना रिवोल्यूशनरी होना चाहिए कि जो भी आए प्रेम करना चाहिए। और आज मैं जब जाता हूँ, मतलब आज मतलब पिछले साल हम जब गए थे, इस साल गए थे, तो जब देखता हूँ तो ये अभी गौड़िया मठ भी उस तरह से सुधर गए, उन्होंने भी कंस्ट्रक्शन किया है, उन्होंने भी अभी वो विचार कर रहे हैं कि रिवोल्यूशन लाना जरूरी है। ठीक है, भक्ति करना जरूरी है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है किस चीज़ों में, जैसे कि प्रभुपाद जी ने लाइफ मेंबरशिप लाया ये, या फिर पुस्तक वितरण ये जो सिस्टमेटिकली किया, या फिर जगन्नाथ जी का रथ यात्रा सबसे बड़ा रिवोल्यूशन। प्रभुपाद जी बोले हमें जगन्नाथ जी का रथ निकालना है, तो बोले कैसे करना है, कुछ नहीं बोले गाड़ी का ये ले लो, बोले बेस ले लो और उसके ऊपर रथ बनाओ, खत्म, रिवोल्यूशन। मतलब एक विचार सरणी प्रभुपाद जी ने सभी को, मतलब विशेष करके जो ये है स्त्रियां थी उनको ब्राह्मण दीक्षा दिया, उनको मतलब पुजारी सेवा, उनको भगवान की भक्ति, तो ये एक पूरा अलग तरह का था, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रचार और प्रसार बढ़ गया। तो ये जो था ये रिवोल्यूशन, मतलब एक तरह का क्रांति भारत, मतलब तभी कुछ कभी कभी भार देखने में ऐसा दिख सकता है कि ऐसे कैसे हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रुक्मिणी जी का हरण, है ना, रुक्मिणी जी, है ना, रुक्मिणी देवी तो वो रोते हुए बैठ सकती थी, मुझे कृष्ण से शादी करना है, विवाह करना है, कृष्ण से विवाह करना है, रोते नहीं बैठे वो, उन्होंने प्रयास किया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने प्रयास किया, कि उन्होंने वो प्रेम पत्र भगवान के नाम से भेजा, फिर भगवान से, तो भगवान क्या देखते हैं, प्रयास देखते हैं। सिर्फ दैववादी बन के नहीं चलेगा। तो भारत देश में अभी क्या हो रहा है, सिर्फ दैववादी चल रहे ना, चलेगा ठीक है, ऐसा नहीं। तो प्रयास करना जरूरी होता है, और कभी कभी भगवान भी उसको ये करते हैं, जैसे सुभद्रा हरण, खुद के ही बहन को मतलब किडनैप करवाते हैं, और वो इस तरह से हो जाता है कि भगवान बोलते हैं अरे ये तो होना ही था। और जैसे श्री राधा वृंदावन चंद्र की, जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जैसे श्री गौर निताय की, श्री प्रभुपाद की जी। तो और ये हम देखते हैं कि तो सबसे बड़ा एक्चुअली भारत देश में मतलब भारत में हम रह रहे तो बोलेंगे हम जी रहे, आहार निद्रा भय मैथुनम च, नहीं, इसके आगे रिवोल्यूशन होना बहुत जरूरी है विचारों में। वो क्या है, भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर से। तो बोलेंगे कि क्या है, अभी नहीं, अभी तो तरुण है, एंजॉय करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे भक्ति बाद में देखेंगे, हो जाता है। अभी क्या इतना सीरियस होना है, अभी क्यों इतना ये चिंता करना है, नहीं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि समय हमें मतलब बता करने आ गया कि कब हमारा मृत्यु हो सकता है। और दूसरा चीज़ है, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बारे में विचार बहुत कम हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि वो सोचने का जो ये है शक्ति है वो लोग भूल चुके हैं। तो ये सिर्फ रिवॉल्यूशन आ सकता है कि इनकी कृपा से, वैष्णव की कृपा से, और महत्वपूर्ण किसके, जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, है ना। अनर्थो पश्यपम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। तो श्रीमद् भागवतम में एक जो पहले स्कंद में पहले अध्याय में ये 17 नंबर का श्लोक है, तो उसमें बोलते हैं कि अनर्थो उपशमम साक्षात। तो जो सामान्य लोग है, जो सामान्य जन स्तर है, वो क्या करते हैं, अपने इस अनर्थों से या फिर जो अपनी जो जीवन शैली है जिससे उनको मतलब परेशानी हो रहा है, वो एक्चुअली नष्ट हो, मतलब वो समाप्त हो सकता है, अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। कब, भक्ति योगम अधोक्षजे, अगर वो भक्ति करेंगे। लेकिन समस्या क्या है, ये लोग जानते ही नहीं है क्या पढ़ना है, तो इनके लिए क्या करते हैं, जो व्यासदेव जी विद्वांस, वो क्या करते हैं, चक्रे सात्वत संहिता, वो क्या करते हैं, वो संहिता ऐसे श्रीमद् भागवतम को हमें प्रस्तुत करते हैं। तो ये हमारे विचारों में जो भी क्या आता है, बदल आएगा, जो भी क्रांति आएगा, वो कब होगा, जब एक्चुअली हम श्रीमद् भागवतम भक्तों के संग में पढ़ेंगे। तो और सिर्फ हो गया नहीं, अभी आगे क्या लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलेगा कौन करेगा, तो जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने सारे शिष्यों को बोलते थे कि क्या होना चाहिए, जो इस भगवत भक्ति का प्रचार कहाँ पे होना चाहिए, पाश्चात्य देशों में होना चाहिए, अंग्रेजी में होना चाहिए। तो ये सभी जन ने सुना था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया किन्होंने, श्रील प्रभुपाद जी ने एक्चुअली, विशेष रूप से, और जो हम सब जानते हैं। और वो उन्होंने उसके लिए मतलब वही, अगर पहले तो लाना है तो पहले सोचना पड़ेगा, फिर उसके आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, ऐसा नहीं कि ये कर सकता है, ये करेगा ना, वो करेगा ना, ऐसा नहीं चलेगा। चल रहा है अपना, चल रहा है ना, देखते हैं कुछ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जैसे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीने के लिए जी रहे, करने के लिए कर रहे, चल रहा है माला चल रहा है, हरि बोल हरि बोल, लेकिन जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तब तक साक्षात्कार का हमें अनुभव नहीं होता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है तो उसके लिए बहुत सारा कंसर्न्स हो जाते हैं, बहुत सारा चिंताएं लेना पड़ता है, और ये इतना आसान नहीं होता। लेकिन इसी की वजह से व्यक्ति क्या हो सकता है, शुद्ध हो जाता है, तब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता। तो ऐसा बोलते हैं कि क्या है? जीवन में कुछ तो कर गुजार के क्या होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए, इस तरह से मतलब कुछ तो करना चाहिए। जैसे कि आज प्रभुपाद जी भी श्लोक में यही बताते हैं, क्या बताते हैं, भारत भूमि ते जन्म हो लिया। अगर इस तात्पर्य में देखेंगे, अगर आप चैतन्य चरितामृत के श्लोक के, प्रभुपाद जी बहुत बड़ा तात्पर्य देते हैं, बोलते हैं कि इस भारत में अभी क्या चल रहा है ना। देखिए भारत देश में बोलेंगे कि मनुष्य जन्म लिया है तो उसको क्या करना चाहिए, अपने किस तरह से अपने जीवन में भक्ति का प्रैक्टिस प्रगति करना चाहिए और फिर उसके बाद दूसरों तक उसको पहुंचाना चाहिए। और ये जो इन मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली कुछ तो करना चाहिए। कृष्ण ही बोलते कि आप क्या करो, आपका कार्य करते रहो, चिंता मत कीजिए, लेकिन समस्या क्या हो जाता है, अपयशी हो गए तो, ये हुआ नहीं तो, ये समस्या है। भगवान कभी भी यश अपयश के बारे में बात ही नहीं करते, वो हमेशा किसके बारे में बोलते, यू डू इट। क्या बोलते, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथा युद्धा युजस्व नैवम पापम अवापसि। तो ट्रेनिंग क्या मिला है, बस सक्सेसफुल होना है, नंबर वन आना है, ये करना है, लेकिन हर कोई नंबर वन नहीं आ सकता है, हर कोई 98% 99% नहीं ला सकता है। तो अभी ऐसा हो गया, ये यश ही सक्सेसफुल, बाकी के अपयशी, ऐसा नहीं है। भगवान के अनुसार क्या है, यू ट्राई इट, अपयशी भी होंगे तो भी चलेगा, कुछ समस्या नहीं, लेकिन आपने प्रयास किया। क्योंकि भगवान ही बोलते हैं ना, अगर आप युद्ध में जीतेंगे, हत्वा हवा प्राप्त से स्वर्ग, मतलब मर गए तो भी क्या मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, जीतवा हवा भोक्ष से महिम, जिंदा रहेंगे तो ये राज्य ही मिलेगा, तो आप सोचिए मत। लेकिन फिर आगे कृष्ण यही बताते, ठीक है कार्य करो, लेकिन कैसे करना है, व्यवसायत्मक बुद्धिर एक कुरु नंदन बहुशाखा अनंत बुद्ध यो व्यवसाय नाम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, लेकिन किस तरह से, व्यवसायत्मक बुद्धिर। तो हम देख सकते हैं पांडवों के जीवन से, उनके जीवन में कितने सारी समस्याएं थी। अगर किसी को लग रहा है कि हमारे जीवन में समस्या लग रही है, तो बस पांडवों को बस एक उदाहरण है, बहुत सारे भक्त हैं। लेकिन पांडव कैसे, जंगल, फिर कुछ समय, बहुत समय तक जंगल, कुछ समय के लिए महल में रहेंगे, फिर वापस जंगल, कुछ समय में फिर महल में रहेंगे, वापस जंगल, कितना स्ट्रगल है। पहले जंगल में जन्म, गए वापस, फिर उनको जलाने का प्रयास किया, वापस जंगल, है ना, तो वापस उनको, मतलब कितना भयंकर है, सिंपल स्थिति में रह रहे थे एकदम, भिक्षा मांगकर, बहुत भयंकर परिस्थिति, इतना आसान नहीं है। एक राजा, मतलब एक मतलब वो राजकुमार है, और भिक्षा मांगकर जी रहे थे। फिर बाद में वापस उनको राज्य मिलता है, कैसा राज्य, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, नथिंग वॉज, मतलब कुछ भी नहीं, उग भी नहीं रहा था, वहां पे राज्य बनाया, कितना कष्ट लिया, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, वापस जीरो, वापस सब द्युत क्रीड़ा में सब हार गए, कितना भयंकर परिस्थिति। कोई बोल सकता था, अरे ठीक है ये सब गया, हमारी पत्नी के साथ भी इतना बड़ा अन्याय उनके साथ, तो भी सहन कर लिया उन्होंने, फिर वापस उन्होंने राज्य प्राप्त किया। लेकिन देखिए भक्त का, उनका चेतना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया उन्होंने, लेकिन जिस वक्त उनको पता चल गया कृष्ण स्वधाम उपगते, स्वधाम चले गए, बस एंड, चलो हो गया अभी हमारा, तो उस वक्त नहीं देखा, अभी बहुत हो गया, अभी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड। तो ये है पांडव, जो कभी मतलब रोते नहीं बैठे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि, और कृष्ण के भरोसे उन्होंने क्या किया ये। लेकिन आज की स्थिति क्या है, आज की स्थिति में लोग क्या करते, आहार निद्रा भय मैथुन, उसमें से ज्यादा परिस्थिति में भी इस किनसे इंस्पिरेशन मिलता है, फॉर एग्जाम्पल हीरो हीरोइंस बोलते है ना। मैं जब साउथ इंडियन यात्रा में गया था, तो वहां पे आप देख सकते हैं, वहां मंदिर के ऊपर बहुत सुंदर ऐसे नृत्य किए हुए ऐसे ये रहते, तो मैं उस डिस्क्रिप्शन पूछ रहा था, इसको क्या बोलते हैं, बोलते नायक नायिका बोलते हैं उसको, मतलब भगवान ही है लेकिन उससे इंस्पिरेशन लेते, ये भगवान ही क्या है, वो बन जाते नायक बन जाते, या फिर जो शुद्ध भक्त है वो नायक बन जाते, वो हीरो बन जाते, या फिर जो ये है मतलब जो देवियां है वो नायिका ऐसा बन जाती। लेकिन आज की स्थिति में क्या सिचुएशन है, नायक नायिका वो क्या कर रहे हैं, हीरो हीरोइन, और उनके अनुसार वो उस तरह का लोग बोलते कि ये हमारे हीरो है, ये हमारे हीरोइन से, तो ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिलेगा फिर। और वो स्वयं इतने खुद फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, लोगों जीवन में क्या कर रहे उनको पता नहीं रहता है, लेकिन आकर्षण किससे होता है, धन संपत्ति से, कि ये करना है। तो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेना था, आध्यात्मिकता में मतलब प्रगति करना है, वो छोड़ के कहाँ पे हो जाता है, भौतिकता में प्रगति करने का ही समस्या हो जाता है, और सब एक्सटर्नल्स के ऊपर चला जाता है, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन इंटरनल्स के ऊपर काम नहीं होता है। जो इंटरनल होना चाहिए, किस तरह से चरित्र कैसा है ना? क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसको छोड़ के इस दुनिया में सबके बारे में चर्चा होती है, धन संपत्ति कितना है, इसके पास ये कितना है, वो कितना है, कैसे दिखता है, कैसे होता है, कैसे हाव भाव है, लेकिन इंटरनल्स जो उसका चरित्र है, तो उसके बारे में इस दुनिया में ज़्यादा चर्चा नहीं होता है। यदि उदाहरण हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम में चवन मुनि और सुकन्या का। चवन मुनि वैसे दिखने में इतने क्या थे, वृद्ध थे, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया सुकन्या ने कि इनको पति के रूप में स्वीकार करना है, उनकी सेवा करनी है। तो रोते नहीं बैठे कि क्या एक्सटर्नल्स के ऊपर ध्यान दे के रहना है, चलो ये क्या, ये बूढ़े व्यक्ति है, इनसे क्या है। तो ये था, ये वैदिक कल्चर रिस्पॉन्सिबल लाइफ बताता था कैसे करना है। या फिर देवहूति, वो तो देवहूति इतनी सुंदर थी कि जो बड़े बड़े देवता जो थे वो ऐसे विमान से आके नीचे गिर जाते थे। और धन संपत्ति के बारे में सोचिए मत, शक्तिशाली पिताजी इतने मनु है, फिर भी क्या क्या कर रहे, वो बोल रहे कि मैं हम मतलब देवहूति ने उन्होंने कर्दम मतलब कर्दम मुनि से शादी किया और उनके साथ सेवा किया। तो ये जो सेवा भाव है ये एक्चुअली हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, वैदिक संस्कृति में। और लेकिन जैसे कि अभी के जीवन में कैसे हो रहा है, लोग सोशल मीडिया के पीछे भागते हैं, इम्पर्सनल बन जाते हैं, मतलब एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, कथन नहीं करेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाते हैं, फिर जीवन में चिंताएं लाते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि भगवान की भक्ति करना है ना। और ये सब करने के बाद अगर ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, भक्ति कर रहे, तो रिफॉर्मेशन होना जरूरी है कि हमारे जीवन में उस तरह से बदल लाना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, भक्तिमय कार्य कैसा है, एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं है, मतलब करना ही करना है। सेवा का मतलब है आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और इसमें आपको शुरुआत में लग सकता है क्या है, भगवान है क्या, भगवत धाम है क्या, जा सकते हैं क्या, नहीं, आपको विश्वास रखना पड़ेगा, श्रद्धा रखना पड़ेगा। तो एक तरह से वो क्या है, तो लोग बोलते हैं अगर आपको ऐसा पता चला कि भगवत धाम है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, प्रभुपाद जी को एक प्रश्न पूछा गया, तो प्रभुपाद जी बोले व्हाट इज द प्रॉब्लम, अगर ऐसा हुआ कि मुझे अंत में पता चला कि भगवान नहीं है, भगवत धाम नहीं, ऐसा अगर आपके अनुसार ऐसा हुआ भी, तो बोले व्हाट इज द प्रॉब्लम, इतना अच्छा जीवन शैली, इतने अच्छे लोग जीने को मिला, इतना अच्छा समय व्यतीत करने को मिला, इतने अच्छे कैरेक्टर चरित्र के लोगों के साथ जीवन व्यतीत करने को मिला, इसके जैसा और क्या हो सकता है। तो लेकिन प्रभुपाद ने बोला, लेकिन अगर आपको पता चला जीवन के अंत में भगवान है, भगवत धाम है, यमदूत है, नरक है, क्या होगा आपका, तो रिफॉर्मेशन लाना है तो आपको अभी अभी लाना पड़ेगा, एंड टाइम में नहीं बोल सकते चलो चलेगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। और इसी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में आप देख सकते हैं एक एक उदाहरण इतना जबरदस्त है कि कभी नहीं बोलते कि कोई भक्त रोते बैठा है मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो नहीं, वो आगे चलते रिफॉर्म कर देते। गजेंद्र रोते नहीं बैठते, अरे नहीं करना चाहिए था, वो उस वक्त अपराध नहीं करना चाहिए था, वो रोते नहीं बैठे, मतलब इन द सेंस दुख नहीं हुआ, दुख उनको, लेकिन रिफॉर्मेशन किया नहीं, प्रयास करना। या फिर विशेष करके भरत महाराज का उदाहरण है, उनको पता चल गया कि जब देखिए हुआ मतलब गलती, उनको पता नहीं क्या, वो के जानबूझकर नहीं हुआ है, मतलब हो गया, और रिफॉर्मेशन लेकिन किया उन्होंने वापस नेक्स्ट लाइफ में, लेकिन उन्होंने प्रस्तुत किया कि जैसे हिरण के जन्म में वो जाकर सुनते थे कहाँ पे कथा सुनने को मिलेगा, अगले जन्म में जड़ भरत बन गए। ये सबसे बड़ी बात ये था, जड़ भरत बनने के बाद भी, जो मुझे ऐसा लगता है, अगर गलत होगा तो माफ़ कर सकते, जड़ भरत कभी लेकिन नेगेटिव नहीं बने, अरे ऐसा मत करो, मतलब दूसरे को ज़्यादा फोर्स नहीं, मतलब उन्होंने गले पे नहीं बैठ गए कि ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, वो कैसे रहे, शांत रहे जब तक समय नहीं आता। जब राजा रघुगण ने बोला तब उन्होंने बोलना चालू कर दिया, तब उन्होंने बताया, और लास्ट में इतना ही बताया कि किस तरह से मन क्या करता है, व्यक्ति को भ्रमित कर देता है वगैरह ये। और मतलब उन्होंने अपने लाइफ में रिफॉर्मेशन लाया उस तरह से कि मतलब वो रोते नहीं बैठे कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। तो ये भगवान के भक्त कर सकते हैं, ये हमें हमेशा भागवत में देखने को मिलेगा। कभी भी वो द्रौपदी नहीं रो रही थी क्यों मेरे पांडव के साथ विवाह हो गया, बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं दूसरे किसी राजा के साथ हो जाता तो शांति से हो जाता, नहीं, उसी इसमें वो हमेशा भगवान को स्मरण करने का
क्या किया उन्होंने, जो अवसर ढूंढा। कुंती महारानी वही बोलती है कि मुझे हर एक समस्या में एक्चुअली भगवान आपका स्मरण कर पा रही हूँ, यही सबसे मेरे लिए सबसे बड़ी संपदा, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। लेकिन हम ये सब बोलेंगे तो बहुत समस्या आ सकते हैं, विपदा संतु ताश, वो सुनने के लिए बहुत आसान है लेकिन जो उसको सहन करना बहुत कठिन हो सकता है। परीक्षित महाराज, उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया। देखिए वो सब है, वो महाभागवत भक्त है, ये है, लेकिन मतलब वो रोते नहीं बैठे कि मैंने उस जो मुनि है उनके गले में मैंने सांप क्यों डाला, क्यों डाला, क्यों डाला, क्यों डाला, क्यों डाला, किया। तो उसके आगे उन्हें रिफॉर्मेशन किया, आई एम वेटिंग फॉर पनिशमेंट। और जैसे उनको पता चल गया, उनको शाप मिल गया, कि वो सो हैप्पी, वो खुश हो गए, बोले कि यस अभी मैं खुद को रिफॉर्म कर पाऊंगा, अभी मैं खुद को ठीक कर पाऊंगा। और यही एक्चुअली क्या होता है, यही श्रीमद् भागवतम बोलता है बार बार। और यही श्रीमद् भागवतम में जब हम सुनते हैं तो क्या है, यस्या वै श्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। तो यही समस्या है, भौतिक स्तर का शोक मोह और भय, इनसे हम जूझ रहे, उनसे अगर मुक्त होना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका यही है। क्या है, यस्या वै श्रूयमानायाम, उसे हमें सुनना पड़ेगा। क्या, कृष्णे परम पुरुषे, इस भागवतम में पढ़ेंगे क्योंकि ये सात्वत संहिता में उसको दिया गया है। और इससे क्या होता है, भक्तिर उत्पद्यते पुंसः, और इससे यही तो हो जाएगा, भक्ति उत्पन्न हो जाएगा, शोक मोह भय चला जाएगा। इस जीवन में भूतकाल के लिए शोक, वर्तमान के लिए मोह, और भविष्य काल के लिए भय में व्यक्ति जीवन। और ये लेकिन ये रिफॉर्मेशन जो इंस्पिरेशन चाहिए वो हमें भागवतम से मिलता है ना, जैसे प्रेरणा फेस्टिवल, उसका नाम ही था प्रेरणा, मतलब अभी भी है प्रेरणा, प्रेरणा देता है कि ऐसे जीना है, होता है, हुआ है, शोक मत करो, मोह मत करो, भय मत करो, भक्तों के साथ होता रहता है। तो कभी कभी भक्तों को पता भी रहता है, प्रभु जी मुझे श्लोक पता है, मुझे जप करना पता है, लेकिन कभी कभी हतोत्साहित हो जाता है, तो उस वक्त वो भक्तों के संग में आ जाता है ना, तो भक्त बोलते होता रहता है, हुआ है, चिंता नहीं, इतिहास में भी ऐसा हुआ है, भविष्य में भी हो जाएगा, लेकिन लगे रहो, तो वापस हाथ में माला दे देंगे, या फिर इंस्पिरेशन, वो इंस्पिरेशन देखिए पता रहता है, लेकिन उस वक्त वो श्रीमद् भागवतम वो भक्त क्या करते हैं, वो इंस्पायर करते हैं। वो भक्तों का संग बहुत जरूरी है। और वही रिसेंटली मतलब मैं एक भक्त से भी सुन रहा था, वो बता रहे थे कि जो हमारे भारत के पंत प्रधान है, वो भी बता रहे थे कि आप क्या करो, कथा किस्सा कथा कथन कीजिए, मतलब आप भी बोला है सभी भारतवासी, आप क्या करो, कथा कथन करो। तो मैं सुन के सोच रहा था हाँ कितना अच्छा, जरूरी है। अभी कथा कथन क्यों, मतलब कथा कथन करने के लिए पहले तो पता होना चाहिए क्या कथा कथन करना है, नहीं तो। लेकिन भागवतम भगवद गीता विशेष करके रामायण महाभारत, इसका कथा कथन करेंगे क्योंकि इसका कारण यही है, कथा कथन नहीं करेंगे तो ये सोशल मीडिया के चक्कर में अटक जाएंगे। सोशल मीडिया मतलब क्या करेंगे, इम्पर्सनल बन जाता है, मेरे 100 मित्र है कहाँ पे, वर्चुअल है, मेरे 500 लोग ये है लेकिन कहाँ पे, वर्चुअल है। कथा कथन के लिए कोई नहीं, जैसे क्लास में सुन रहा था, मेरे 500 मित्र है लेकिन जब रोने का समय आता है तो कंधा किसका दे, लैपटॉप के कंधे पे सो रोएंगे, नहीं हो सकता। तो ये होता है, एक्टिव है, मतलब ये इंस्पिरेशन जो चाहिए एक्चुअली भक्तों के संग में कहाँ मिलता है, भागवतम में। और इसको ये बहुत जरूरी है, एंड टाइम पे कनेक्ट करना जरूरी है। एक बार मैंने क्या किया, पानी पीना था गर्म पानी, तो भर दिया उसमें, वो हीटर में लगा दिया, पानी गर्म क्यों नहीं हो रहा है, बटन ही नहीं चालू किया था मैंने, तो मतलब सब कुछ कर देते हैं, सब कुछ पता है लेकिन कनेक्ट करना रह जाता है। तो उस वक्त भक्तों के संग रहता है, भागवतम रहता है, क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। कथयंतेषि माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में आनंद आ जाता है, है ना। तो अगर ये नहीं होगा, देखिए अगर अगर हृदय में अगर ये शांतता नहीं होगा, या फिर क्योंकि हृदय में सबसे बड़ा अनर्थ रहता है एनवी, द्वेष, तो ये द्वेष नहीं रहे मतलब नहीं निकलेगा तो बहुत भयंकर रूप से क्या करता है, फिर अपने जीवन को उध्वस्त करना चालू कर देते हैं। तो एक उदाहरण है कि जैसे पंचतंत्र में पढ़ा था, एक मेंढक रहता है, मेंढक का राजा रहता है, वो मेंढक का राजा वो मतलब बोलता है एक कुएं में रहता है, बहुत सारे मेंढक रहते हैं कुएं में रहते रहते हैं। लेकिन ये मेंढक राजा बोलता है, सोचता है मेरे इतने सारे दुश्मन हैं, कौन मेरा सुन ये नहीं हो रहा है, मेरे कुछ अगेंस्ट भी है, कोई मंत्री है, तो अभी मैं क्या करूं। ऐसे वो सोच रहा था क्या करना है, तो उसने देखा एक सांप जा रहा था उधर से, बहुत बड़ा सांप। तो मेंढक ने बोला, बोले सांप को बोला रुक जाओ। सांप बोला पागल है क्या, मैं तुझे खा डालूंगा। अरे बोला तुम मुझे अभी खा लोगे तुम्हारा एक क्षण का पेट भर जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें एक ये करता हूँ, डील दे देता हूँ कि तुम वो करोगे तो तुम्हारा पेट हमेशा भरता रहेगा। सांप बोला क्या बात है बताओ। तो बोले कुछ नहीं, मेरे कुछ शत्रु है, मैं तुम्हें उनको बताऊंगा, उनको आप खाते रहो। तो सांप बोले ठीक है, मेरा ही पेट भर जाएगा, तुम्हारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। तो वी सांप को लेकर आ जाते हैं, तो सारे मेंढक डर के भाग जाते हैं। तो राजा बोले चिंता मत करो, ये सांप को अभी पश्चाताप हो रहा है, तो इसने वो व्रत लिया है कि वो निर्जला करने वाला है, तो अभी अभी कुछ खाने वाला नहीं है। तो और इन्होंने अभी तक बहुत सारा पाप किया है, बहुत सारे मेंढकों को खाया है, इसी के लिए अभी वो क्या करने वाले, सारे मेंढकों को अपने ऊपर बैठा कर घुमाने वाला है। कितनी बड़ी कॉमेडी देखिए, मेंढक तो खुद तैर सकता है ना पानी में, लेकिन फिर भी देखिए क्या बोलते हैं उनको, हाँ चलो सांप के ऊपर से तैरना है। तो बोलते हैं अरे क्या बात है। तो वो सांप बोलता है एक्चुअली मैं अनंत शेष जी का भक्त हूँ, तो अभी मैं शुद्ध बन चुका हूँ, तो अभी मैं आपको कुछ नहीं हानि नहीं पहुँचाऊंगा। तो सारे बच्चे लोग आते हैं, सब बैठ जाते हैं, सब उसके ऊपर घूमते हैं, तो सब लोग घूम रहे हैं उसके ऊपर पूरा। तो सब बोलते वाह, तो बच्चे छोटे छोटे मेंढक को भी घूमते हैं ये चल रहे। लेकिन रात में वो मेंढक का राजा क्या करता था, वो बोलता था ये देखो वो मेरा शत्रु है उसको खाओ। तो ऐसा करते करते एक एक वो अपने शत्रु को नष्ट करवा रहा था। लेकिन मेंढक कम होते जाए, कम हो रहे कम हो रहे, कुछ दिन के बाद वो सर्प बोला सब कुछ खत्म हो गए, अभी अभी किसको खाऊं। तो राजा सोच रहा था अभी तो ये इसको कुछ नहीं दिया तो मुझे खा लेगा। तो बोलते कि ठीक है वो जो एक मेरा मंत्री है उसको खा लो। मतलब फिर वापस फिर उसके मंत्री खा के हो जाता है, फिर कुछ समय का तो बोलते किसको खाऊं, तो उसको रिलेटिव्स को खाओ, मेरे काका को खाओ, मेरे मामा को खाओ। फिर ऐसा करते करते वो भी खत्म हो जाते, फिर लास्ट में वो बोलता है मेरी पत्नी को खाओ, बच्चों को खाओ, ऐसा हो जाता है। सांप बोलता है देखो मुझे भूख लगा है, अभी कोई नहीं बचा है। तो सांप वो देखता है कोई नहीं बचा है, तो सांप उसको खा लेता है जाता है। तो ये सांप किस तरह से एक द्वेष है, एनवी है ना, जब व्यक्ति मतलब एक्चुअली क्या हो जाता है, जब उसको वो अंदर लेकर आ गया, लेकिन समस्या क्या हो गया, वो एनवी ने क्या कर दिया उसको खा लिया। एक और एक मतलब बहुत सुंदर कथा मैंने सुना था कि एक मोनेस्ट्री था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उस मोनेस्ट्री में क्या हो गया, कुछ समय के बाद थोड़ा सा समस्या होना चालू हो गया। तो उस समस्या में तो जो वहां पे जो ये रहते हैं उनके क्या बोलते हैं उनको लीडर्स रहते हैं, तो वो सोच रहे थे क्या हो रहा है, जो इतना अच्छा चल रहा था फिर क्यों नहीं हो रहा है। तो वहाँ के सोच रहे थे क्या करना है, एबॉट बोलते हैं उनको, तो एबॉट वो सोच रहा था ऐसे कैसे हो सकता है, क्या हो रहा है, क्या समस्या हो रहा है, क्यों विश्वास कम हो रहा है, श्रद्धा या फिर लोगों का आकर्षण कम हो रहा है, लोग आ नहीं पा रहे वो मॉनेस्ट्री में आ नहीं रहे। तो फिर वो उनके पास उनके जो एक्चुअली अपने इसमें किसी आचार्य वगैरह रहते हैं, तो उनमें रब है। हाँ तो एक्चुअली आप लोगों को स्टोरी पता होगा, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। तो रबाई उसको उनको जाके मिलते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या चल रही, लेकिन मतलब आप कुछ विजडम मतलब कुछ ज्ञान दीजिए। तो रबाई बोले ठीक है, बोला मैं आपको एक शब्द बोलता हूँ, आप उसको बस इसको आप सब अपने जो रह रहे उनको बता दीजिए कि आप लोगों में कौन एक मसीहा है, देर इज समवन, देर इज मसीहा इन बिटवीन यू, मतलब आप लोगों के बीच में मसीहा है। तो अबाउट बोले ठीक है, वो आ जाते और फिर आके फिर आपने सब लोगों को एक साथ आकर बुलाकर बोलते कि हम सब में एक मसीहा है, बस इतना बोलते हैं। और ये रब्बाई ने बोला है, मतलब ये विस्टम, ये रियलिटी है। तो फिर जो वहाँ पे जो थे वो सब रहने वाले वो बोल रहे थे हम में से कौन मसीहा है, ये हो सकता है। ये थोड़ा समस्या है, लेकिन इसमें कितने अच्छे गुण है। मैंने देखा था एक बार कितने अच्छे वैष्णव की सेवा की थी, इनमें कितना अच्छा शुद्ध चरित्र है, कितनी पवित्रता है। ये बोलते ये थोड़ा ऐसा है, लेकिन कितने मतलब कितना नम्र है। तो इस तरह से जो एक समय था, जो एक दूसरे के साथ समस्या हो रहा था कि दोष ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी एक दूसरे में क्या ढूंढ रहे थे, वो अच्छे गुण को ज्यादा देख रहे थे। और इसकी वजह से वो क्या हो गया उनमें, फिर एप्रिसिएशन, एप्रिशिएट करना चालू कर दिया। और इस एप्रिसिएशन और इसी के मतलब ये जब एक दूसरे का गुणगान करना चालू कर दिया, तो क्या हो गया उनके बीच में जो थोड़ा सा दुर्व्यवहार जो हो रहा था वो सब कम हो गया, और वो आकर्षित करने लगा बाहर के व्यक्तियों को, बोले कितने अच्छे से रह रहे है ना। तो इस तरह से वो जो एक समय पे ऐसा स्थिति था कि वो बिगड़ रहा था, लेकिन वापस वो क्या हो गया, अच्छा हो गया। क्यों? जब उन्होंने रिफॉर्म किया खुद को, सभी जन ने, किस तरह से कि जो द्वेष को निकालना है और अप्रिशिएट करना, इसी को एक्चुअली फिर आगे स्टेप हो जाता है, थोड़ा समय और थोड़ा सा तो हो जाता है रिजॉइस, मतलब क्या हमें मिला है ना। नॉर्मली क्या हो जाता है, ये सब हो गया, ये हो गया, जो भी हो गया, लास्ट में रिजॉइस होना चाहिए, आनंद होना चाहिए कि है ना। तो विशेष करके कुछ दिन पहले रेवती पति प्रभु ने एक क्लिप भेजा था, अपने ऑडियो क्लिप, बहुत सुंदर था कि किस तरह से ब्रह्मचारी आश्रम में मतलब आनंद ही रह सकते हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं सुन रहा था, राधानाथ महाराज बता रहे थे किस तरह से वैष्णव के बीच में हम जब डीपली अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को, कैसे उन्होंने सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह से त्याग किया है ना। तो ये करेंगे तो व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है और रह सकता है। तो यहाँ पे ये सिर्फ ब्रह्मचारी आश्रम के लिए नहीं है, ये किसी भी आश्रम के लिए, ये सभी के लिए कि हम अप्रिशिएट करते रहे। और मतलब मैंने जितना सुना है, चैतन्य महाप्रभु भी क्या करते थे, अप्रिशिएट करते थे, अपने भक्तों को अप्रिशिएट करते थे। हाँ, वो ये भी मतलब जहाँ पे जरूर है वहाँ पे ठीक भी करते थे, लेकिन अप्रिशिएशन कितना करते थे, पंचमुखे, पांच मुख से जैसे अप्रिशिएट करेंगे वैसे तरह से। तो जैसे कि ऐसा नहीं कि अप्रिशिएट करने के लिए आपको रीज़न चाहिए कि मुझे उसको अप्रिशिएट ही करना है, नहीं, आप कर सकते हो आपके हृदय में जब होता है। तो जब ये बोलते हैं रूप गोस्वामी, जब वो बहुत सुंदर श्लोक रहे, एक्चुअली क्या होता है, एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हो रहा है, तो उस रथ यात्रा के समय एक श्लोक बोलते हैं। वो श्लोक सुनने के बाद ऐसा लगता है कि एक एक लड़की है, उसका अर्थ ऐसा लगता है कि एक मतलब युवती है, वो युवक के प्रेम में मतलब प्रतीक्षा कर रही है एक नदी के किनारे, उस तरह से, इस तरह से सुंदर वातावरण में। तो ऐसा लगता है कि कोई तो प्रेमी प्रेमिका उनका बीच के कोई तो श्लोक है, लेकिन उसको रूप गोस्वामी भी बहुत पता था, उसको बहुत अच्छे से समझाते कि वही श्रीमती राधा रानी, ये कृष्ण, वही कुरुक्षेत्र कृष्ण है जिनके आप मैं प्रतीक्षा कर रहे हो, जो यमुना नदी के किनारे, बहुत सुंदर वो श्लोक है ऐसा। तो ये जब श्लोक को चैतन्य महाप्रभु पढ़ते हैं तो बोलते हैं, मोर अंतर्वार्ता रूप जानी ले के मने, स्वरूप कहे जानी कृपा करिया चापने। तो स्वरूप दामोदर को, तो स्वरूप दामोदर बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं स्वरूप दामोदर को, ये कैसे क्या समझ गए। तो स्वरूप दामोदर बोलते हैं, आपकी तो कृपा है। तो और मतलब यहाँ पे फिर आगे फिर चैतन्य महाप्रभु वापस कुछ दिन के बाद आते, तो वहाँ पे रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक लिखते, उसको पढ़ने के बाद चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाते, तुंडे तांडविनी रतिमितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड़ कड़म्बिनी घटयते कर्णाभूतेभ्यः स्पृहं चैत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियानां कृतिं नो जाने जनिता केद्भिरमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। तो ये सुनने के बाद तो वहाँ पे हरिदास ठाकुर नाचना चालू हो जाते, बोले क्या है हरि नाम का, क्या गुणगान के। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु फिर वापस जाते हैं, और जाने के बाद स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, देखिए कितना महान महान, इन सबके साथ इनके सामने रूप गोस्वामी पद का गुणगान करते हैं। कैसे, क्या कैसे पता चला, हाउ ही नोज माई हार्ट, किस तरह से उनका हृदय पता चला। तो सब बोलते भगवान सब करता करवाने का तो आप ही हो। और ऐसे ही तो ये मतलब एप्रिसिएशन बहुत एक सुंदर उदाहरण है। अगर हम देखेंगे जयपताका महाराज का, आपने सुना जब शुरुआत में भक्ति में आए थे, तो आपने सुना होगा कभी जयपताका महाराज बोलते कि भक्ति में आया था, वो बोलते कि मैं ऐसे ही जा रहा था, रथ का कार्ट टक टक चल रहा था, तो वहाँ नीचे से आवाज आ गया, हे यू वांट टू सेव दिस वर्ल्ड, मतलब आप इस दुनिया को बचाने में मदद करो, बोलते बोले दुनिया में बचाना है, यस यस करूंगा। बोले बोले ठीक है, ये हथौड़ा ले लो, एक खिले ले लो, बोले इसको तो मतलब इसको क्या करो आप, इस रथ के ऊपर चलाओ खिले को। तो नहीं, रथ को खिले मारने से मैं इस दुनिया को कैसे बचाने वाला। तो बोले इसके ऊपर जगन्नाथ जी जाने वाले, जगन्नाथ वो अपनी कृपा वर्षा दिखाएंगे, सबका दुख हरण कर देंगे, सब दुनिया का उद्धार हो जाएगा। ठीक है। फिर वो खिले मार रहे थे, फिर जयनंद प्रभु बोले वाह क्या खिले मारे हैं, वाह। तो जय पतंग मार रहा खिले मारे। अरे मतलब ऐसा आड़ा गया है, टेढ़ा गया है, बट वो बोले कि क्या अप्रिसिएशन कर रहे थे जयानंद प्रभु। मतलब वो हम जब भी सेवा करते रहते थे तो बोलते थे वाह क्या झाड़ू किया, वाह कितना अच्छा कुछ। तो ये मतलब हम देखते हैं कि जो भक्त क्या करते हैं, बहुत गुणगान करते हैं, कभी कभी मतलब ज़्यादा ही हो जाता है। मतलब सॉरी मैं माफ़ कर दीजिए थोड़ा, कल की बात है, मैं ऐसे ही था, माधोपुर माधो से अपरू आ गए, बोले हरि बोल जैन प्रीचिंग करो। मतलब जैन प्रीचिंग करो मतलब मैं, अरे आप जैन बैकग्राउंड से जैन जैन जैन लोगों में प्रीचिंग करो, वो बहुत उनका ऑलरेडी सब नियमों का पालन करते हैं, तो भक्ति उनको देना। तो मैं बोला मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं, मतलब इतना ना वो जैन लोगों में इंटरेस्ट है कि, मतलब लेकिन ये भक्तों में कितना इंटरेस्ट है, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप भक्ति कर। मुझे अभी याद है वो ब्रह्मचर्य यात्रा में गए थे और श्रृंगेरी में, तो वहाँ पे लिटरली गौर गोपाल प्रभु को पकड़ के लेकर आए थे, प्रभु जी ये देखिए ये जैन बैकग्राउंड से ब्रह्मचारी है, गौर गोपाल हाँ ये अपन जैन जैन क्या है। तो मतलब माधव साहब बोलते करना चाहिए, कोई नहीं कर रहा है। तो अप्रिसिएशन देखिए, मतलब कभी कभी व्यक्ति को लगता है जैसे वो हनुमान के जैसा रहता है, मतलब वो खुद ही भूल जाते हैं क्या करना है, जामवान आके बोले कर सकते हो, ये जुम मार सकते, क्या क्या नहीं किया था। तो इस तरह से तो ये अप्रिसिएशन से मतलब क्या कर सकते हैं हम, भक्ति में बहुत प्रगति हो जाते हैं। और ये हमें मिला है वैष्णवता, और यही शिवजी बोलते पार्वती को कि मेरे भक्त किस तरह से रहते हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर नरकेश्वर अपि तुल्यार्थ दर्शिना। नारायण परा वो हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि हमें क्या मिला है, ऐसे भक्त मिले हैं जो नारायण परा है और ऐसे भगवान मिले हैं। क्या बोलते हैं, साधो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तम मदन्य ते न जानाती ना हम ते ब्यो मना गपीना। मतलब कैसे बोल रहे हो, मतलब मैं उनके सिवा कुछ जानता नहीं, वो मेरे सिवा कुछ जानते नहीं, ऐसे भगवान की भक्ति करने को मिल रहे, ऐसे वैष्णवों का संग मिलता है। और लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। और यही वैष्णव अपराध से वो दुर्वास मुनि भी इतने ज्ञान होने के बाद भी क्या हो गए, भगवान भी उनको बोलते कि आपका तपो विद्या च विप्राणाम निःश्रेयस करियो भे ते वो दुर्वनित्यस्य कल्पते कर्तारण्यतः। मतलब आपके पास तपो विद्या दोनों है, लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाएंगे, अगर विनीतता नम्रता नहीं रहेंगी, तो ये आपके लिए भयंकर बन गए। तो आप क्या कीजिए, भक्तों का आश्रय लीजिए। और यही ये भगवान है जो कैसे है, बस मुझे थोड़ा एक समय 5 मिनट। तो मंदिर में अभी कुछ समय के लिए ऐसा हुआ था, एक ऐसा हमारे आश्रम में हुआ था कि एक चिड़िया का बच्चा था, वो पूरा अंडे के साथ गिर गया, लेकिन अमेजिंग था कि वो अंडे से बच्चा जिंदा निकला था। और तब से वो विशेष करके प्रभु जी के मतलब रूम के सामने घूम रहा था, रेशम प्रभु जी के सामने रूम के सामने घूम रहा था, प्रभु जी एक्चुअली देख सकते थे कितना हो। लेकिन वहाँ पे हम सभी जन देख रहे थे कि छोट मतलब उसकी माँ की उसको कैसे ख्याल रख रहे, यहाँ तक कि भक्त भी ख्याल रख रहे थे, अरे उसको कुछ खिलाने के लिए बोले उसके माँ को खिलाने के लिए राइस रखा था, बोले ये महाप्रसाद ये प्रसाद खाएगी तो बच्चों को खिलाएगी। लेकिन पक्षी है कीड़ा खाते हो। राष्ट्रपति प्रभु ने एक्चुअली बहुत उस बच्चे को एक्चुअली एक जगह पे एक बार तो ढक के रखा था, वो ठंडी से फड़फड़ कर रहा था, वो देखा है मतलब भक्त कितना ख्याल रखते। तो ये जब देख रहा था किस तरह से एक बच्चा जो मृत्यु के समीप था, लेकिन आज वो मतलब अच्छे से होके उड़ के चला गया। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम तथा यथा वत्स तरा सुधार्थ प्रियम प्रियव विशुतम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दीक्षित। अजात पक्षा इव मातर, जिस तरह से एक पक्षी अपने बच्चे का ख्याल रखती है, जिस तरह से एक मतलब बच्चा अपनी माँ को देख के ही मतलब वो बस वो उसी की प्रतीक्षा करता रहता है, या फिर जो बछड़ा रहता है वो माँ की प्रतीक्षा करता है दूध कब मिलेगा दोहने का, मतलब जब उसी तरह जैसे एक प्रेयसी प्रियकर के लिए प्रतीक्षा करते हैं। तो वहां पे भक्त बोल रहे कि मैं आपके वहां सेवा में लगना चाहता हूँ, उस तरह से उस प्रतीक्षा से आपके आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। और ये सेवा भाव हम देख सकते हैं वृंदावन में, मतलब ऐसा नहीं कि भारत भूमि में ऐसा हो गया कि अभी कुछ नहीं बचे, लेकिन वृंदावन में भी आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसे वृंदावन को छोड़कर श्रील प्रभुपाद जी गए, क्योंकि यही वचन पूरा करने के लिए, भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर उपकार पर उपकार। अगर प्रभुपाद जी ने वो कष्ट नहीं लिया रहते तो आज हम पता नहीं कहाँ रह सकते थे। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की बहुत विशेष कृपा है, और इसी एक्चुअली हम मतलब कोटि कोटि जन्म तक, मतलब उसको एक्चुअली कभी हम ये नहीं कर सकते, पूर्तता नहीं कर सकते कि ये हमारे ऊपर जो कृपा किया है प्रभुपाद जी, उनके जो उनके शिष्यों ने या अभी हमारे जो वरिष्ठों ने। तो मैं भी आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि उस कृपा को समझो, और मैं भी थोड़ा सा थोड़ा नहीं अच्छा खासा गंभीर हो जाऊँ भक्ति में, तो ज़रूरी है। और अगर मैंने कुछ मर्यादा व्यतिक्रम किया है और बहुत ज़्यादा आपका समय लिया है, तो उसके लिए मैं आपका क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा।